ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, आत्मनिवेदी भक्त हैं और हम कल उनकी दिनचर्या सुन रहे थे। तो उनकी दिनचर्या में हमने पहला श्लोक लिया था, तीन चरण पहले श्लोक के, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचा शिवैकुंठ गुणानुवर्णनम करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु और श्रुतिम चकर अच्युत सत्कथोदये। श्रुतिम उनके कान, उन्होंने श्री कृष्ण अच्युत श्री कृष्ण की सत कथाओं में हमेशा प्रवृत्त करके रखे थे कान। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं तो आँख से नहीं कान से करने हैं। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये, उनकी कथा उनकी गाथा नाम रूप लीला गुण धाम परिकर पराफनेलिया साज साजन साधन, ये सब की कथा एक ही है, अलग नहीं है, सब अलग नहीं है, एक ही है। कृष्ण कृष्ण का नाम कथा रूप लीला गुण धाम सब एक ही है, एब्सोल्यूट एक सत्य है। तो जब हम कथा सुनते हैं तो कृष्ण का वांगमय रूप का दर्शन करते हैं। गोपियां विरह गीत में, गोपी गीत में विरही होकर श्री कृष्ण को पुकारती हैं। क्या कहती है नौवां श्लोक गोपी गीत का, क्या कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हे प्रियतम कृष्ण आपका कथामृत ही तपित दुखी जीवात्माओं का जीवन है। जिसका जीवन तपित है दुखी है उनका जीवन है आपकी कथा। तो भौतिक संसार में जो भी जीव है सब जीव तपित हैं, चाहे राजा हो या रंग, चाहे धनी हो या निर्धन, कोई भी हो, सबको ये संसार लगा है। संसार का अर्थ है जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, ये चार चीजें हमें हमेशा तपित करती है। पैसा है तो तंदुरुस्ती नहीं है बीमारी है, अगर सुंदरता है तो रोग है वगैरह, एक से उल्टा गुणधर्म डुअलिटी। ये जगत द्वंद से बना है, सुख दुख ठंडी गर्मी सुख दुख। तो ये भौतिक संसार में भौतिक जगत में सब जीव दुखी है तपित है। तो ये तपित जीवात्माओं का जीवन क्या है, हे कृष्ण आपकी कथामृत आपका कथामृत तव कथामृतम तप्त जीवनम कविपीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भ्रुवि गृणंती ये भूरिदा जना। भूरिदा जना जो आपका कथामृत का आम जनता को आस्वादन कराते हैं श्री कृष्ण कथाकार, वो सबसे बड़े दानी हैं। भ्रुवि गृणंती ये भूरिदा जना, आपका कथामृत वो गृणंती वो कथा करते हैं और सब सुनते हैं। तपित जीवात्माओं का एक कथामृत जीवन है, कवि पीड़ितम कलमशाप हम, और कलमस को दूर करने वाली है ये कथा। कलमस का अर्थ है पाप, कलयुग के, कलयुग की जो विपरीत परिस्थितियां, कलयुग पाप से परिपूर्ण है। कलो दोष निधे राजन, दोष निधि, कलयुग ये दोष का निधि है। लेकिन अस्ति एक महत गुणा, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा गुण है, एक कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। श्री कृष्ण का कीर्तन करने से जीव तुरंत आजीवन मुक्त हो जाता है, यही जीवन में मुक्त हो जाता है। कलम शाप हम श्रवण मंगलम, और जब ये कथा सुनने में आती है तो मंगल मंगल हो जाता है, मंगल ग्रह भी उल्टा हो तो सीधा हो जाता है। उनकी कथा, कृष्ण की कथा सुनने से कोई मंगली नहीं रहती, नहीं मंगला रहता, सब कुछ मंगल हो जाते हैं, सब कुछ मंगल हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमद आततम, और हे कृष्ण, हे सखे, हे प्रिय, आपकी एक कथा आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है और जब सुनने में आती है तो मंगल मंगल कर देती है। श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भूवि गृणंती ये भूरिदा जना, और जो सबसे बड़े दानवीर हैं ये कथा करके आम जनता को दान देते हैं, ये सबसे ऊंचा दान। तो ये कथा ही तपित जीवात्माओं का जीवन है, इसलिए अम्बरीश महाराज श्री कृष्ण कथा में ही उनके कान हमेशा प्रवृत्त रखते थे। बिले बत उरुक्रम विक्रमान्ये, ये श्लोक है 2.320। बिले बत उरुक्रम विक्रमान्ये न सुणवती सुणवत कर्णपुटे नरस्य जीवा सति दार्दुर्के वसुत न च उपगायति उरुगाय गाथा। बिले बत उरुक्रम विक्रमान्ये, जो कर्णरंध्र में अगर श्री कृष्ण की कथा नहीं जाती, नाम नहीं जाता, बिले बत बिल ये सांप के, चूहे के बिल के बराबर है, बिल को सुनाई नहीं देता, तो ये कान भौतिक कथाएं सुनते हुए भी वो सुन नहीं रहा है, वो बिल की तरह है, क्योंकि भौतिक गाथा भौतिक वार्ता सुन रहा है। तो ये कान कान नहीं है, क्या है, बिल है। बिले बत उरुक्रम विक्रमान्य, ये कर्ण का उपयोग है उरुक्रम के विक्रम की कथा सुनने के लिए। उरुक्रम श्री कृष्ण की पराक्रम की कथाएं सुनने के लिए ही कान का एकमात्र उपयोग है, भौतिक गाथा कथा का लिए एक कान नहीं है। न सुनवत कर्ण पुटे नरस्य, न सुनवत कर्ण पुटे नरस्य, अगर कर्ण रंध्र में श्री कृष्ण की कथा वार्ता उरुक्रम पराक्रम, उरुक्रम के पराक्रम की कथा कर्ण रंध्र में जाती नहीं है, तो वो कर्ण रंध्र कान का होल, कान का जो सुराग जो भी बोलो, कर्ण रंध्र ये बिल की तरह है, चूहे के बिल, सांप का बिल, उनको सुनाई नहीं देता। दार्दुरी के वसुत, और क्या कहा, जीवा सती, कल हमने श्लोक गाया था, जीवा सती दार्दुरी का ए वसुत न च उपगायती उरुगाय गाथा। अगर जीवा उरुगाय गाथा, कृष्ण कथा कृष्ण गाथा अगर जीवा नहीं गाती तो वो जीव मेढक की जीव की तरह है, मेढक अननेसेसरली फिजूल का आवाज करता रहता है, सांप को इनविटेशन देता रहता है, सांप आता है और उनको खा जाता है। तो ये आज कई समय तक हम कथा की कथा करेंगे कि कथा सुनना क्यों चाहिए, कितना जरूरी है। चाहे अम्बरीश महाराज की कथा पूरी हो ना हो, लेकिन ये शिक्षण है, आपको सीखना होगा। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है श्री कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न करना, आकर्षण, टेस्ट उत्पन्न करना, एकमात्र हेतु मनुष्य जीवन का। 1-8 धर्म स्वनुस्थिता पुंसा विश्वाक्षेन कथा सुयत न उत्पादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म मनुष्य जीवन का एकमात्र धर्म है, धर्म स्वनुस्थिता पुंसा। जो धर्म ड्यूटी हम बजाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनसे जो उपार्जन होता है पैसा, तो वो पैसों का उपयोग हमें ऐसे करना चाहिए ताकि हमें श्री कृष्ण की कथा वार्ता, कीर्तन, कथा सुनने में हमें रुचि पैदा हो। धर्म स्वनुस्थिता पुंसा विश्वाक्षेन कथा सुयत। विश्वाक्षेन कृष्ण, विश्वाक्षेन कृष्ण का नाम, विश्वाक्षेन कथा, कृष्ण कथा। धर्म स्वनुस्थिता पुंसा विश्वक्षेन कथा सुयत न उत्पादये यदि रतिम। ये कथा में अगर हमारे धर्म से, कर्म से किया गया उपार्जन अगर श्री कृष्ण की कथा में रति हमारी पैदा नहीं करता, हमें भगवान की कथा की ओर आकर्षित वो उपार्जन नहीं करता, तो क्या है वो उपार्जन करना? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है। जैसे गधा हर रोज श्रम करता है, बुद्धू, गधा बुद्धू है। कैसे गधा बुद्धू है? धोबी होता है तो धोबी गधे के आगे एक फुट एक कैरेट गाजर लटका देता है, तो गधे को गाजर बहुत पसंद होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो गधे के ऊपर धोबी बहुत बड़ा बोझ लान देता है और गधे के आगे डिंगलिंग कैरेट, हिलता हुआ गाजर, तो गधा समझता है कि मैं एक पग आगे लूंगा तो एक गाजर मुझे मिल जाएगा। तो जैसे एक पग लेता है तो वो गाजर भी एक पग आगे जाता है, तो गधा समझता है अभी नहीं मिला तो अभी तो मिलना चाहिए दूसरा तीसरा पांव, और जैसे गाजर आगे गधा पीछे और इनके पीछे धोबी। तो हर सारा दिन वो भार वहन करता रहता है गधा, और धोबी क्या करता है जब सूरज ढलता है, काम खत्म हो जाता है, तो वो गाजर लेके अपने घिस्से में रख लेता है और कल वही गाजर उनको लटका देता है और गधा फिर से चलता रहता। बुद्धू है गधा, गधा निकृष्ट है, लेकिन यह कैरेट गाजर है और गधा इनके पीछे पीछे। तो धर्म स्वनुस्थिता पुंसा विश्वाक्षेन कथा सुयत न उत्पादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हमारे धर्म से जो भी पैसा उपार्जन हुआ, हमारे कर्म से, धर्म से जो भी पैसा उपार्जन हुआ, वो उपार्जन पैसा का उपयोग कैसे करना चाहिए? वैसे करना चाहिए ताकि हमारे हृदय में श्री कृष्ण की कथाओं के प्रति अखूट आकर्षण पैदा हो, रति पैदा हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो श्रम एव ही केवलम। गधा वैतृ बोलते हैं, गधा वैतृ का अर्थ है गधावत जीवन जीना, और ज्यादातर 90% लोग गधा की तरह कड़ा काम करते हैं, 12 घंटा काम एंड 4 घंटा आना जाना, 16 यहाँ से गूर गांव से आगे जाते लोग, 5 घंटा ट्रैवलिंग, तो गधा की तरह है। अगर ये उपार्जन मनी पैसा हमारे हृदय में श्री कृष्ण की कथाओं में आकर्षण पैदा नहीं करती है उपार्जन, तो वो उपार्जन श्रम एव ही केवलम। श्रम एव, एव का अर्थ है मात्र, ही का अर्थ है मात्र, केवल का मात्र है, केवल का अर्थ है मात्र। तीन बार कहा कि ये श्रम, श्रम और श्रम ही है। श्रम एव ही केवलम। ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण की कथा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो 325-25 भागवत। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति रुद करण रसायन कथा तज्जोत्स्नात आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण की कथा ये हम जैसे भक्तों के बीच में सुननी चाहिए, भक्तों से सुननी चाहिए। सताम प्रसंगात साधुओं के प्रसंग में कथा सुननी चाहिए, भक्तों के संग में कथा सुननी चाहिए। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायन कथा तज्जोष्णात अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। बहुत सुंदर श्लोक है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, मेरे वीर्य की कथाएं, भगवान के वीर्य की कथाएं। सताम प्रसंगात साधु पुरुषों के संग में सुननी चाहिए, भक्तों के संग में सुननी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि भवन्ति हृद कर्ण रसायन कथा, भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनने से वो कृष्ण कथा अनंत गुणा, अनंत गुणी मधुर हो जाती है। भवन्ति हृद कर्ण रसायन मधुर, रसायन जैसे नींबू अकेले खाओगे आप नींबू तो अच्छा नहीं लगेगा, उनमें थोड़ा सा नमक डालोगे नींबू के ऊपर और खाओगे तो और मधुरता बढ़ जाएगी, और उसमें थोड़ी चीनी भी डाल दो तो थोड़ा और भी, तो ये केमिकल रिएक्शन से रस बढ़ जाता है। उसी तरह भवन्ति रुद कर्ण रसायन, ये रसायन जैसे रसायन को मिलाते हैं हम तो उसमें से मधुर स्वाद पैदा होता है, उसी तरह सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायन कथा तज्जोष्णा आसु अपवर्ग वर्तमनी। आसु तुरंत, अपवर्ग मुक्ति, ये भौतिक संसार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें मुक्ति मिल जाती है। अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग मुक्ति का रास्ता, मुक्ति का दरवाजा खुला हो जाता है। अपवर्ग वर्तमनी, और क्या होता है कथा से? मुक्ति का रास्ता वो खुल जाता है। इतना ही नहीं, क्या होता है? श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा रति, भगवान श्री कृष्ण में रति पैदा होती है, और भक्ति, उनमें हमारा प्रेम जागृत होता है कृष्ण में, जो मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। भवन्ति रद कर्ण रसायन कथा, तो ये कथा ये एकमात्र हमारे जीवन का जीवन है, श्री कृष्ण कथा। ग्राम्य कथा नहीं, ग्राम्य कथा ना सुनी बे यार, ग्राम्य कथा ना कही बे, बालो न खाई बे यार, बालो न पहरी बे। सो कथा में रुचि कैसे पैदा हो? अगले श्लोक में हमने देखा न उत्पादे यदि रतिम रुचि और भक्तिर रतिर अनुक्रमिष्यति, तो ये रति रुचि कैसे पैदा हो? तो 1.2.16 शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशयात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, शुश्रूषो सुनना चाहिए, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि महत् सेवया, महत् सेवा महान श्री कृष्ण भक्त स्यात् महत् सेवया विप्रा, विप्रा 60,000 60,000 ऋषि मुनि विप्र नैमिषारण्य में कथा सुनने के लिए सुत गोस्वामी से कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो विप्र, विप्र को क्या, विप्रो ये सब ऋषि मुनियों को सुत गोस्वामी क्या कहते हैं कि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशयात्। वासुदेव श्री कृष्ण की कथा में रुचि कैसे पैदा हो सकती है? भक्तों की सेवा से, सेवया भक्तों की सेवा, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति केर मूल, भक्तों की सेवा ही ये कृष्ण प्रेम रति का मूल है। तो महत् सेवा, महत् सेवया, महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते, महत् सेवा भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा करने से श्री कृष्ण की कथा गाथा में हमें रुचि पैदा होती है। मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंतिश्च रमन्ति च। एक भक्त दूसरे भक्त आपस आपस में प्रेम का व्यवहार करते हैं, सेवा का व्यवहार करते हैं और उससे क्या होता है? मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, कथा मेरी कथा करते हैं, एक दूसरों को बोध करते हैं। इन भक्तों का चित्त मेरे में होता है, उनके प्राण मेरे में होते हैं और मेरी कथा करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंतिश्च रमन्ति च, और उससे क्या होता है? उनको संपूर्णतया संतुष्टि मिल जाती है और कहीं उनकी नजर तरसेगी नहीं, उनकी इच्छाएं और कहीं जाएगी नहीं, वो तृप्त हो जाएगा, तृप्त हो जाए। मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंतिश्च रमन्ति च। 1.2.17 ये भागवत के श्लोक है। सुनवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त अभद्राणी विदुनोति सृहुत सताम, सृहुत सताम। सुनवताम स्वकथाम कृष्ण, श्री कृष्ण सुनवताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की कथा सुनते हैं। सुनवताम स्वकथाम कृष्ण, तो उसे क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्यात्मा हो जाता है वो, पुण्य श्रवण कीर्तन। और क्या होता है? हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय में जो भी मलिन है, पाप है, जो मलिनता है, ये सब मलिन निकल जाता है। हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, और क्या? विदुनोति सृहुत सताम, विदुनोति सृहुत सताम, सताम प्रसंगात मम वीर्य सम, सताम साधुओं के प्रसंग से, साधुओं के संग में हरि कथा का पान करना चाहिए। सुनवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विदुनोति सृहुत सताम, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, हम पुण्यात्मा हो जाते हैं और ये शुद्ध हृदय में श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम स्फुरित होता है, जो मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है श्री कृष्ण हमें कितना प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण हमारी ओर कितने आकृष्ट होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हम कृष्ण से कितने आकृष्ट या प्रेम करते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कृष्ण हमें कितना प्यार करते हैं, कृष्णा हमारी ओर कितना आकर्षित है, ये महत्वपूर्ण है। गोपियों की ओर, राधा रानी की ओर कृष्णा हमेशा आकृष्ट रहते थे। कृष्ण आकर्षिणी च, शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण को भक्त की ओर भगाती है, भक्त की ओर आकर्षित करते है। कृष्ण आकर्षिणी च, तो सुणुताम स्वकृथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतोस्ति अभद्राणी। हृदय में से सब अभद्र पाप मैल सब कुछ भाग जाता है। हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति श्रुत सताम, विदुनोति श्रुत सताम। इसीलिए उनके बाद के श्लोक में कहा है 18, बहुत सुंदर श्लोक से, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये कथा वासुदेव कथा, नष्ट प्राय अभद्र, प्राय का अर्थ है आखिरी रह गया हुआ भी जो अभद्र है, मलिनता है, मल है, पाप है हृदय में, ये सब निकल जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, कैसे, नित्यम भागवत सेवया, भागवत कथा का नित्य सेवन करना चाहिए, नित्य, नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं कि चार दिन कथा हो गई और अभी हम, ऐसा नहीं, घर में कथा हमेशा चलनी चाहिए। प्रभुपाद जी के 2000 कथाएं हैं, लेक्चर्स, हर रोज हर पल सुनना चाहिए। MP3 प्लेयर लगाओ या तो पेन ड्राइव लगाओ या कुछ भी, या तो कान में ईयरफोन, कैसे भी, खाते हुए, सोते हुए, खाना पकाते हुए, नहाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, हर क्षण कृष्ण कथा सुनना चाहिए। आजकल ये सब गैजेट्स, ये पेन ड्राइव गैजेट बहुत सस्ते में मिल जाता है, कोई इतना दाम नहीं। हमें 24 घंटा वो हमारे घर में प्रभुपाद जी की कथा चलनी चाहिए, शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, शुद्ध भक्तों से कथा, शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, वैष्णव से सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखद गिराद पूताम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथापय। दूध को अगर सर्प छू जा तो वो दूध दूध नहीं रहता, वो जहर बन जाता है, लगता है दूध लेकिन है जहर। उसी तरह अभक्त जैसे मायावादी सन्यासी जो ऐसे तिलक करते हैं, या तो कुछ ऊर्ध्वपुंड तिलक नहीं है, वैष्णव नहीं है, उनसे श्री कृष्ण की कथा सुननी नहीं चाहिए। क्यों, सर्प उच्छिष्ट यथा पय, लगता है दूध, लगती है कृष्ण कथा लेकिन थोड़ा सा जहर। कृष्णा मर गए, कृष्णा उनका रूप था, माया की उनकी लीला थी, माया, तो मायावादी उनको बोलते शुष्क वेदांतिस्ट, शुष्क ड्राई, कोई रस नहीं उसमें, ब्रह्म के उपासक। तो ऐसे ब्रह्मवादियों से नहीं सुनना चाहिए, निराकारवादियों से नहीं सुनना चाहिए, शुष्क वेदांतिस्टों से नहीं सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए, श्री कृष्ण के भक्तों से, वैष्णवों से। भागवत पढ़ोगिया भागवत स्थाने, भागवत कथा भागवत भक्तों से सुनना चाहिए, तो क्या होगा, भवंती हृदय कर्ण रसायन कथा, विप्लव जन्माएगा आपके हृदय में, हृदय परिवर्तन, आपके हृदय में विस्फोटन होगा, आपके हृदय में वो कथा पाप का विस्फोटन भवंती रुद कर्ण रसायन कथा अविष्ण अवैष्णव मुखद गिराद पुताम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथापय सर्प उच्छिष्ट यथापय। ये सब संस्कृत श्लोक बहुत सरल है, कोई कड़ा काम समझने में नहीं है। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ये अम्बरीश महाराज हमेशा उनका समय भगवान की कथा में सुनने में लगाते थे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, नित्य भागवत कथा सुननी चाहिए। ये नित्य शब्द महत्वपूर्ण है, हमेशा कोई सेशन नहीं, कोई स्टॉप नहीं, अविरत कथा सुननी चाहिए। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र हेतु है। श्री कृष्ण की कथा हमेशा सुनी जाए, प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि हमें सब काम छोड़ देने, नहीं, काम करते जाओ कथा सुनते जाओ, क्या तकलीफ है। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो क्या होगा कथा सुनने से, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक, श्री कृष्ण का नाम है उत्तम श्लोक। ये उत्तम श्लोक में हमारी नैष्ठिकी भक्ति पैदा होगी, हमारे हृदय में अभद्र चले जाएगा और क्या पैदा होगा, श्री कृष्ण के और शुद्ध प्रेम भक्ति, भक्तिर भवती नैष्ठिकी भक्ति पैदा होगी। तो नित्यम भागवत सेवया, इसलिए 10.1.4 में कहा गया है निवृत्त तरसैर उपगीयमाना बवौषधि सोत्र मनोविरामात। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात उमान भवाब्धिम तरेत, का उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरज्यत विना पशुग्नात, पुमान विरज्यत विना पशुग्नात। अगर मनुष्य अपना जीवन सफल नहीं बना लेता, भवसागर से तैर नहीं लेता, तो वो आत्मा हत्यारा है, आत्मघात करने वाला है। तो क्या निवृत्त तरसैर उपगीयमाना बवौषधि श्रोत्र मनोविरामात, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भवसागर से तरने की एकमात्र दवाई बव औषधि क्या है। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के गुणों की कथा, ये बव औषधि है, बव सागर तरने की दवाई है, बव रोग मिटाने की दवाई है। निवृत्त तरसैर, जो त्यागी है उनके लिए भी, गृहस्थ है उनके लिए भी, सबके लिए। निवृत्त तरसैर उपगीयमाना बवौषधि सोत्र मनोविरामात, क्या सुनना है, क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की गुणों की कथा सुनना है। तो क्या होगा, भवसागर तैर जाओगे। सरल है, वेरी बहुत सिंपल है, आपको सुनना है। एक कान कितना सुनता है, बहुत कम, तो उनको सुनाए रखो हमेशा, वाजिंत्र आपका टेप रिकॉर्डर MP3 प्लेयर चलता रहे हमेशा के लिए 24 घंटा। जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलेगी इतना वो अच्छा रहेगा। कंप्यूटर चलाते रहो, कंप्यूटर में भी आप कथा फिट कर दो और कंप्यूटर चलता रहे। तो ये है नित्यम भागवत सेवया, निवृत्त सरसैर उपगीयमाना बवौषधि, ये कथा ये बहु औषधि है। बहु सागर, बहु किसको कहते हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, ये बहु रोग है, बहु सागर है। तो बहु सागर तरने का, बहु रोग मिटाने की दवाई क्या है, ये बहुषधि श्रोत्र मनोविरामात। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। कल हमने श्लोक लिया था, तीन प्रकार के लोगों को वासुदेव कथा पवित्र करती है। जैसे गंगा पवित्र करती है। कथा करने वाला, कथा सुनने वाला और कथा प्रश्न पूछने वाला, तो ये पुरुष तस्माद भारत सर्वात्मा 215। तस्माद इसीलिए भारत हे परीक्षित महाराज सर्वात्मा, सर्वात्मा श्री कृष्ण सर्वात्मा है। भगवान ईश्वरो हरि, भगवान ईश्वर हरि श्री कृष्ण। क्या करना चाहिए? भगवान ईश्वर हरि का श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुनना चाहिए उनके गुण रूप लीला की कथा। श्रोतव्यम सुनना चाहिए, सुनो तत् सुनो। भक्ति की आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है सुनने से। तत् सुनो, सुनो। ब्रह्मा ने भी सुना, तेने ब्रह्मा ही आदि कवये मुह्यंती यत् सुरय। सो श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता अभयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम्। जिनको अभय चाहिए, जिनको भय से बचना है, उनको क्या करना चाहिए? श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च, श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहिए, तो अभय दान मिलता है। ये कथा भगवान की हमें अभय दान देती है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई कथा के बारे में कह सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ कह दिया। फिर भी एक आखिरी श्लोक है, बहुत सुंदर है। आखिरी मतलब मैं आखिरी बोल रहा हूँ। कहीं कहीं भागवत में, शास्त्रों में कथा के बारे में कहा गया कि यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, कथा सुनना। नित्यम भागवत से हुए श्रीमद् भागवत 2:3:17। आयु हरति वैपुंसा उद्यान अस्तान च अनसौ तस्यार्थे यत क्षणो नीत नीत। उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक शब्द कई बार आया, जो उत्तम श्लोकों से जिनका वर्णन किया जाता है वो है कृष्ण। उत्तम श्लोक वार्तया, वार्ता कथा गाथा, उत्तम श्लोक की वार्ता। तो या आयु हरति वैपुंसाम उद्यान उदय, अस्तान अस्त, सूर्य उदय सूर्योदय सूर्यास्त होने से पुरुष का आयु सूरज हर लेता है। लेकिन अगर कोई श्री कृष्ण की वार्ता कथा हमेशा सुनता है तो वो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाएगा और उनका आयु वैसे भी आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा मरता नहीं, इसलिए वो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएगा कथा वार्ता सुनने से। बाद में वो उनको मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर छूट जाएगा। आयु हरति वै पुंसाम, वै सर्टनली निश्चित रूप से सूर्य उदय सूर्यास्त होने से सूर्य पुरुष का मनुष्य का आयु हर लेता है। लेकिन जो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की वार्ता हमें सुनता है उनकी आयु वो नहीं हर सकता। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की वार्ता कथा का ही महात्म्य है। हर रोज प्रण लो, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपका MP3 प्लेयर 24 घंटा प्रभुपाद जी कथा में लगाए रखना है, तो अपना कान सुनता रहेगा हमेशा। जाने में अनजाने में जैसे नाम लेते हो तो नाम अपना प्रभाव डालेगा, उसी तरह जान अनजाने में भी कृष्ण कथा सुनते रहोगे तो वो कथा आपका कल्याण करेगी ही, निश्चित रूप से कथा। तो इसलिए अम्बरीश महाराज श्रुतिम चक्कर अच्युत सत कथोदय, अपने कान और अपनी सब इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण में लगाई थी। श्रुतिम चक्कर अच्युत सत कथोदय, एक श्लोक संपन्न क्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, दृशौ दोनों आंखें, मुकुंद लिंगालय, मुकुंद लिंग मुकुंद की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मुकुंद लिंग बोलते हैं। श्री विग्रह आरा धन नित्य नाना, श्री विग्रह को मुकुंद लिंग कहते हैं। तो दोनों आंखें मुकुंद भगवान की मूर्ति में, मूर्ति के दर्शनों में, दर्शन में वो लगाए रखते थे। तो मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, तो अम्बरीश महाराज ये शुद्ध भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। भगवान श्री कृष्ण में और उनके श्री विग्रह में कोई भेद नहीं है। भगवान अणु अणु में है, कण कण में है और दोनों कण के बीच में भी है। तो मूर्ति में रहने में उनको क्या कठिनाई है? लोग कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है लेकिन मूर्ति में नहीं, मंदिर में नहीं, तो ये लॉजिक बराबर नहीं है। भगवान का श्री विग्रह और श्री कृष्ण एक ही है। श्रील प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बॉक्स हो जो पोस्ट ऑफिस से ऑथराइज हो, ऑथराइज पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और उनके बिल्कुल पास में दूसरा एक बॉक्स है जो ऑथराइज नहीं है। तो ऑथराइज बॉक्स में खत डालोगे तो खत उनके डेस्टिनेशन पहुंचेगा, लेकिन दूसरे बॉक्स में नहीं है दोनों बॉक्स। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या शंकर विष्णु ब्रह्मा के विग्रह ये खुद हैं। ऐसा नहीं कि पाषाण पत्थर पित्तल है। ऑथराइज बॉक्स का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विग्रह अर्च विग्रह ये गुरु परंपरा की प्रार्थना से भगवान मूर्तिमंत हो जाते हैं। क्या प्रार्थना है? कि ये भक्त भौतिक जगत में भौतिक शरीर से आपका दिव्य विग्रह नहीं देख पा रहा है, तो उनके ऊपर अनुग्रह कृपा करने के लिए आप ये पत्थर की मूर्ति में आप आके बसो रहो, ये प्रार्थना है। तो जब शुद्ध भक्त परंपरा गुरु परंपरा ये प्रार्थना करते हैं वेदोक्त मंत्रों से, तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा ऑथोराइज्ड गुरु परंपरा में आचार्य। तो भगवान आचार्यों की प्रार्थना से भक्त की सेवा लेने के लिए मूर्तिमंत हो जाते हैं। बाद में वो पाषाण पत्थर पित्तल नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। अर्चे विष्णु शिलाभिर गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि सा नारकी सह। जो व्यक्ति विष्णु भगवान का विग्रह में, अर्च विग्रह में, अर्च विष्णु शिलाभिर विष्णु की अर्च विष्णु का अर्च विग्रह मूर्ति में जो पत्थर शिला भाव करता है, ये शिला है, तो उनकी बुद्धि नारकी बुद्धि है, हेलिस मेंटालिटी। अर्चे विष्णु शिलाभिर गुरु सुनरमति, और गुरु में सामान्य मनुष्य बुद्धि करता है, तो उनकी बुद्धि नारकी है। और वैष्णवों की कोई जात नहीं, वैष्णव ये बंगी वैष्णव, ये ब्राह्मण वैष्णव, वैष्णव ये सबसे ऊंचा ऊंचा वर्ग है वैष्णव। श्री कृष्ण के भक्त ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। और तो श्री कृष्ण का विग्रह और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। मूर्ति कई प्रकार की होती है, 9 प्रकार की हमारे मन में मूर्ति बनाते हैं मन से, ये सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। ऐसी राजा रानी की मूर्ति हमारे मन में बना सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। बाद में वुड लकड़ी की मूर्ति, दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ, दारू ब्रह्म है, वुड की मूर्ति। मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं, मिट्टी गणपति चौथ के दिन मिट्टी के गणपति बनाते हैं। 9 रात्रि माँ की मूर्ति मिट्टी की बनाते हैं, तो वो माँ और गणपति ही है, मिट्टी नहीं है। मिट्टी की मूर्ति मेटल पंच धातु अष्ट धातु की मूर्ति बनाते हैं, मोती की मूर्ति बनाते हैं, कहीं मोती से पिक्चर बनाते हैं, चित्र का पेंटिंग की मूर्ति होती है। ज़्यादातर घरों में चित्र प्रतिमा ये मूर्ति है, रेत की मूर्ति बनाते हैं। तो ये मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठित होती है ब्राह्मण, ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा इंस्टेंटली करते हैं कुछ समय के लिए पूजा के लिए, और बाद में सब देवी देवताओं का विसर्जन करते हैं। देवी देवताओं का विसर्जन होता है लेकिन विष्णु कृष्ण का विसर्जन नहीं होता, वो हमेशा भक्त के घर में रहते हैं, उनका कभी विसर्जन ब्राह्मण नहीं करते। तो अर्चे विष्णु शिला भीर गुरुसु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि सा नारकी सह। तो हमने देखा है पृथु पूजन है, पृथु ये मूर्तियों की मूर्ति की पूजा करते थे, उसमें प्रवीण थे, और उससे मूर्ति पूजा करने से ही उनको सिद्धि प्राप्त होती है। भगवत प्रेम सिद्धि का अर्थ है, अणिमा लगीमा नहीं, श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो हमें कई मूर्ति देखी है जो मूर्ति भक्तों के लिए अनेक चेष्टा करती है, जैसे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ के नज़दीक साक्षी गोपाल है, वृंदावन से लेके साउथ इंडिया तक मूर्ति चल के गई। ब्राह्मण कहता है मूर्ति को कि आप साक्षी पुराने के लिए चलो, ये वार्ता है, लंबी कथा है और सत्य घटना है। तो ब्राह्मण कहता है अपने साक्षी साखपुरी थी तो साक्षी पुराने के लिए मेरे साथ चलो, तो मूर्ति उनको बोलती है कि मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे चल सकती हूँ। तो ब्राह्मण उनको लॉजिक से हराते हैं, इफ यू कैन टॉक देन यू कैन वॉक ऑल्सो। तो बाद में गोपाल को चलना पड़ा ऑल द वे, कितने किलोमीटर तक, वृंदावन से साउथ इंडिया विद्यानगर। तो मूर्ति, ये मूर्ति पत्थर नहीं है, हमारे साथ हमारे भाव के मुताबिक विग्रह शिव विग्रह हमसे प्रेम का आदान प्रदान करता है। सनातन गोस्वामी सट गोस्वामी के वरिष्ठ गोस्वामी सनातन गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन प्रकाशित किया, उनके श्री विग्रह मदन मोहन, तो मदन मोहन जी उनके हाथ से हर रोज बाटी खाते थे, उनके हाथ से हर रोज बाटी लेना, ये है राधिका रमण। ये मूर्ति भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जब नेपाल गंडकी स्नान करने गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पानी की अंजलि लेके पूजा कर रहे थे, तो अंजलि में यही सालिंग्राम उनके अंजलि में आ गए। तो सोचा कि ये अंजलि में आ गए तो कुछ इन्हें आ गया होगा, अंजलि भरने गए तो अंजलि में सालिंग्राम आ गए, तो छोड़ दिए। दूसरी बार अंजलि भरी तो वही सालिंग्राम उनकी अंजलि में आए, तो छोड़ दिया कि ये तो कुछ करतूत होगा, तो छोड़ दिया। तीसरी बार अंजलि लेने गए तो वही सालिंग्राम, इतने बड़े सालिंग्राम उनके अंजलि में आए, हाथ में आए। तो वो सालिंग्राम उनकी सेवा चाहते थे, तो वृंदावन लेके आए। तो दूसरे सब गोस्वामी गण मूर्ति की पूजा करते थे, श्रृंगार करते थे, मुरली देते थे, तो उनको भी एक दिन इच्छा हुई कि मेरे पास अगर राधा रमण होते तो कितना अच्छा होता, मैं हर रोज श्रृंगार करता, हार मुकुट मोर मुकुट और सेवा पूजा अर्चन भोग लगाना। तो रातों रात ये सालिंग्राम मूर्तिमंत हो जाते हैं, सुंदर राधा रमण मूर्ति हो जाते हैं। तो ये भक्तों का भाव ग्राही जनार्दन, ये भक्तों का भाव मूर्ति ग्रहण करती है, ये पाषाण पत्थर पित्तल नहीं है, साक्षात मूर्ति साक्षात कृष्ण है। हमें करोड़ों उदाहरण शास्त्रों से मिलते हैं जहाँ मूर्ति मूर्तिमंत मूर्ति ये व्यक्ति होके भक्तों के साथ व्यवहार करती है। भागवत में एक कथा है, दुर्गा अम्बा शक्ति काली, काली की मूर्ति है और काली के भक्त चोर लुटारू ये उनकी पूजा करना चाहते थे, तो बलि चढ़ाना चाहते थे बलि। तो उन्होंने एक पुरुष की शोध में वो निकले, तो ये जड़ भरत महाराज रुष्ट पृष्ट तगड़े जड़ भरत शुद्ध भक्त थे। ये जन्म में इसलिए जड़ थे कि ये जन्म में मुझे मेरा आत्यंतिक कल्याण कर ही लेना है, इसलिए जड़वत व्यवहार करते थे और सुख शांति, इसलिए शरीर भी रुष्ट पृष्ट था। तो ये चोर लुटारू उनको पकड़ के माँ को बलि चढ़ाने के लिए मंदिर ले आए, माँ के मंदिर में। तो जड़ भरत महाराज परम वैष्णव परम भक्त परम कृष्ण भक्त परम विष्णु के भक्त, राम नारायण विष्णु कृष्णा एक ही बात, परम वैष्णव थे। तो ये काली के भक्त खड़ग लेके उनकी बलि चढ़ाने वाले थे, उनको उनको बलि चढ़ाने वाले थे। तुरंत मूर्ति में से काली माँ तुरंत प्रकट हुई, तुरंत आविर्भाव, विग्रह भी आविर्भाव ही है लेकिन प्रकट हुई, आविर्भाव हुआ और वही खड़ग से तरवाल से वो चोर लुटारों का हत्या की, मूर्तिमंत। तो आपकी मूर्ति एक कागज मोती पेंट पत्थर पित्तल नहीं है, आपके प्रेम के अनुरूप वो मूर्ति में से भगवान मूर्तिमंत हो जाएंगे। हमारे इस्कॉन के सब भक्त मूर्ति को लाल लड़ाते हैं, मेरे बिना ये खाएगा नहीं, मेरे बिना ये सोएगा नहीं, उनको टेव डालते हैं, हर रोज टेव डालते डालते हैं। और भगवान भी उनको कहते हैं आज मेरा भोग कोई और हड़प कर गया, ये साथ में कोई बैठा है गणपति या शंकर या कोई दूसरा, आज मुझे भोग नहीं मिला, फिर से भोग लगा। मूर्ति उनसे बातें करती है, व्यवहार करती है, टेव डालती है, स्पॉइल करती है। इंग्लिश में इस्कॉन डिवोटीज दे स्पॉइल देयर डीटी एंड द डीटी डिमांड्स एवरीथिंग फ्रॉम देम, टेव डालती है। कई उदाहरण है कि मूर्ति भक्त का भाव ग्रहण करती है। जैसे शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी रेमुना धाम गए, जगन्नाथपुरी जाने के लिए रास्ते में गोपीनाथ के दर्शन के लिए गोपीनाथ रेमुना धाम गए, दर्शन किया तो वहाँ 12 हंडी का सुंदर खीर का भोग लगता है, हांडी इतनी बड़ी होती है, खीर भोग लगता है। 12 शाम को जिसको हम जिसको वो अमृत केली कहते हैं, अमृत केली। तो वहाँ माधवेंद्रपुरी हमारे गुरु के गुरु के गुरु चैतन्य महाप्रभु के गुरु शुद्ध भक्त और राधा भाव में हमेशा रहते थे, गोपी भाव में। तो गोपीनाथ, जब गोपीनाथ दर्शन करते थे तो उनको उन्हें कुछ इच्छा की कि अगर ये खीर थोड़ी सी मुझे चखने के लिए मिल जाए तो मैं ऐसी स्वादिष्ट खीर गोपाल के लिए, मेरे गोपाल के लिए, श्रीनाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी गोपाल के लिए मैं बनाऊंगा। ये श्रीनाथ जी नाथ द्वारा पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय की जो मूर्ति है वो ओरिजिनली मूर्ति माधवेंद्र पुरी ने प्रकाशित की थी। तो ये मूर्ति जो गोपीनाथ जी की मूर्ति है, उनके सामने इच्छा की कि अगर ऐसी सुंदर खीर मुझे थोड़ी सी चाखने के लिए मिल जाए, टेस्ट के लिए मिल जाए, तो मैं ऐसी ही खीर हर रोज मेरे गोपाल को, श्रीनाथ जी को लगाऊं। तो कोई बुरी इच्छा नहीं थी, पेट भरने की इच्छा नहीं थी, टेस्ट करने की इच्छा नहीं थी, इच्छा थी गोपाल के लिए। फिर भी वो सन्यासी थे तो बुरा मान गए और मैंने इतनी खराब इच्छा की तो सारी रात में प्रायश्चित करूंगा, कीर्तन करूंगा। मार्केट प्लेस में गए, कीर्तन करने लगे सारी रात। तो यहाँ क्या हुआ कि गोपीनाथ जी को 12 हांडी का भोग लगा, उसमें से एक हांडी गोपीनाथ जी ने लेके अपनी धोती में उनको चोरी कर ली, धोती में लिपट दी चोरी करके। तो रात में जो हांडिया उनने हटा ली पुजारी ने, और रात में सोया तो उनको स्वप्न देते बारंबार, उठ मैंने खीर चुराई है मेरे भक्त के लिए और वो खीर मेरी धोती में है, वो लेके माधवेंद्रपुरी को आप दे आओ। तो माधवेंद्रपुरी वो बाजार में कीर्तन कर रहे हैं, उनको दे आओ। तो वो पुजारी उठता है, देखा तो सचमुच खीर चुराई थी, खीर चोर गोपीनाथ ने खीर चुराई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। और बाद में वो जाते हैं माधवेंद्रपुरी को खीर देते हैं तो कहते हैं कि अगर जब तक आप एक खीर का भोग नहीं लगाओगे तब तक गोपीनाथ ने मुझे स्वप्न में कहा है कि उनको चैन नहीं पड़ेगा, गोपीनाथ जी को चैन नहीं होगा, इसलिए आप ये खीर का भोग लगाओ। तो भोग लगाते हैं, हांडी भी के टुकड़े भी हम उनकी चोरी में ले लेते हैं। हर रोज गोपीनाथ जी की हांडी थी तो थोड़ा सा टुकड़ा खाते थे। लंबी कहानी है, इसे कहने का मतलब कि मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, अपनी दो आंखें हमेश मुकुंद के लिंग का दर्शन, मूर्ति का दर्शन करने में हमेशा प्रवृत्त रखते हैं। तो भौतिक जगत में श्री कृष्ण का अर्च विग्रह अवतार हमेश साक्षात मौजूद रहता है। तो ये श्री विग्रह मथुरा में केशव देव जी, ये साक्षात कृष्ण है मथुरा में, क्या जन्मभूमि में नए केशव देव और पुराने प्राचीन केशव देव, ये प्राचीन केशव देव ये अर्च विग्रह अवतार है श्री कृष्ण का साक्षात। उनके दर्शन से आपका सर्वांगे कल्याण होता है। ये वज्रनाभ की प्रतिष्ठित मूर्ति है, श्री कृष्ण के पौत्र कृष्णा अनिरुद्ध प्रद्युमन से ये वज्रनाभ उन्होंने प्रतिष्ठा की थी। आदि केशव देव शब्द लग, आदि केशव, व्रज के चार देव हैं, केशव देव, बलदेव, गोविंद देव और हरिदेव, हरिदेव गोवर्धन में हरिदेव है, बल दाऊ जी में बलदेव है। तो विषय हमारा मूर्ति ये साक्षात श्री कृष्ण ही है। केशव देव मथुरा में, पुरी में जगन्नाथ, ये बहुत पुरानी, ये भी कह सकते हैं कि सनातन अर्च विग्रह कृष्ण का, श्री कृष्ण के अर्च विग्रह अवतार, जो आम जनता को बहुत कंसेशन में भक्ति देने वाला अवतार, प्रेम देने वाला अवतार जगन्नाथ। केशव देव प्रयाग में, बिंदु माधव मायापुर में हरि, बहुत सुंदर बड़े हरि की मूर्ति, कम से कम 20 फुट नहीं तो 15 फुट लंबी, 15 फुट ऊंची हरि की मूर्ति, लॉर्ड चैतन्य की मूर्ति, द्वारिका में द्वारकाधीश, ये सब मूर्ति अवतार, अर्च विग्रह अवतार है। दर्शनीय दृश्य तद भृत्य गात्र स्पर्शने संग अंग संगमम तव भृत्य दास, भृत्य सेवक, श्री कृष्ण के सेवक, श्री कृष्ण के दास, श्री कृष्ण के भक्त, गात्र, गात्र का अर्थ है उनके अंग, उनका शरीर, पर्श स्पर्श करना, तद भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, उनके अंगों का संग करना, अर्थात उनके पांव छूना वगैरह, अंग संग, भक्तों को, भक्तों के चरणों की रज छूना, मतलब यही है कि अंग संगमम। ये बहुत बड़ा भक्ति का साधन है, भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, यही तीन महाबल, ये भक्ति में ये तीन महाबल है, भक्तों के पद का रज, भक्तों के पद की रज, भक्तों के पद का जल और भक्तों का उच्छिष्ट प्रसाद, महा महाप्रसाद, ये तीन महाबल है भक्ति में, ये तीन महाबल है। तो ये भक्तों का तव भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, भक्तों का स्पर्श करना चाहिए, ये भक्ति में हमें बहुत बड़ा वरदान देता है। द्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, द्राणम च तद पाद सरोज सौरभे, नासिका, नासिका से अम्बरीश महाराज श्री विष्णु कृष्ण के चरणों में जो सरोज कमल का फूल तुलसी उनका सुगंध लेते थे, तो अपनी नासिका की प्रवृत्ति क्या थी, हमें श्री कृष्ण के फूल हार और तुलसी का सुगंध लेना, अत्तर का, स्पेशली हमारे इस्कॉन में आरती के अंत में अत्तर भगवान को अर्पित किया जाता है, अत्तर का सुगंध लेना। तो ये है द्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे और श्रीमत तुलसिया रसनाम तद अर्पिते, रसनाम जीभ, जीभ से अम्बरीश महाराज श्री कृष्ण के प्रसाद का आस्वादन करते थे। जीभ को प्रसाद के बिना और कुछ आप दोगे तो ये महापाप है, ये महाचोरी है, चोर है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना खाता है वो चोर है और वो घोर पापी है, घोर पापी। इसलिए अम्बरीश महाराज भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ ही अपने जीभ पर रख के खाते थे। श्रीमत तुलसिया रसनाम तद अर्पिते, रसनाम जीभ को। तो भगवान का प्रसाद दूर से आया हो और भगवान का प्रसाद क्या बोलते, दुर्गंध युक्त भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रसाद प्रसाद ही रहता है, वो प्रसाद को तुरंत ग्रहण करना चाहिए तुरंत। एक कथा है चैतन्य चरितामृत में कि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े प्रखर विद्वान भक्त, तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन सुबह सुबह मंगला आरती में जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उन्हें प्राप्त होता है। वो तुरंत प्रसाद लेके वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए और सार्वभौम सो रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रसाद दिया। तो तुरंत दातुन नहीं, कुछ पानी से मुंह साफ करना नहीं, तुरंत उठ के तुरंत ही जगन्नाथ जी का प्रसाद उन्होंने ऑनर किया, उन्होंने तुरंत लिया प्रसाद। तो चैतन्य महाप्रभु के खुश हो गए और कहते हैं कि ऐसा दूर देश से आया हो और दुर्गंध युक्त हो और कैसे भी प्रसाद हो, प्रसाद को तुरंत ग्रहण करना चाहिए। तो ये महाप्रसाद का महात्म्य है, महाप्रसाद तुरंत जैसे ही मिला, ऐसा नहीं कि मैं बाद में लूँगा बाद में खाऊंगा, तुरंत उनको उनका आदर करना चाहिए, तुरंत महाप्रसाद का आदर करना चाहिए। तो ये श्रीमद् तुलस्या रसनाम तद अर्पिते, ये रसना का उपयोग है। रसना का दूसरा उपयोग है गाना, बोलना। तो रसना से श्रील रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं उपदेशामृत में, कहते हैं आठवां श्लोक उपदेशामृत का, तन नाम रसनाम अर्पिते, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो। ये श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा है उनके शिष्यों के लिए उपदेशामृत में। ये उपदेशामृत सबको पढ़नी चाहिए, 11 श्लोक है, सबको ये बुक पढ़नी चाहिए उपदेशामृत। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मर्त्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्यत। जीव से तन नाम रूप चरित गाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप लीला गुण धाम ये जीव से रटना चाहिए। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मर्त्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठान व्रजे तद अनुराग जनानुगामी कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम। सब उपदेशों का सार, सब उपदेशों का राजा उपदेश क्या है कि तन कृष्ण में, तन नाम रूप चरिता आदि, श्री कृष्ण का नाम रूप चरित्र आदि स्मर्त्यो क्रमेण रसना, रसना जीभ से भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप लीला गुण धाम का आस्वादन करना चाहिए, रसास्वादन करना चाहिए। स्मर्त्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजित तिष्ठान व्रजे और व्रज में रहना चाहिए, वृंदावन में रहना चाहिए एक रात दो रात। और क्या करना चाहिए, तद अनुरागी जनानुगामी, वहाँ श्री कृष्ण के रसज्ञ भक्त जो हैं, तद अनुरागी श्री कृष्ण के अनुराग में जो रसास्वादन करता है रसज्ञ भक्त, उनका अनुगामी बन के क्या करना चाहिए, कालम नियत काल प्रसार वक्त प्रसार करना चाहिए। कालम नियत अखिलम 24 घंटा अखिल काल, कालम नियत अखिलम इति उपदेश सारम। ये सब उपदेशों का सार है क्या कि भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम जीवा से मन से गाना चाहिए, कहा वृंदावन में। कैसे, तद अनुरागी जनानुगामी, श्री कृष्ण के भक्त जो अनुरागी भक्त हैं उनका अनुगमन करते हुए हमें अखिल काल प्रसार करना चाहिए। इति उपदेश सारम, ये उपदेश का सार है। सारम सारम समुद्रुतम, ये रसना जीव, ये जीव हमें कल की थोड़ा सा वर्णन किया था, दो टुकड़ा भी कर सकती है। इसीलिए ये जीव को श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम में हमेशा प्रवृत्त रखना चाहिए। और पादव हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे, अम्बरीश महाराज ने अपने चरण पादव का क्या उपयोग किया, हरेर क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र वृंदावन मथुरा द्वारिका पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, तो पांव अगर श्री कृष्ण के क्षेत्र में चलता नहीं है तो वो पांव पेड़ के तने के बराबर है, पेड़ का तना चल नहीं सकता। इसी तरह अगर ये पांव भगवान के क्षेत्र में चलते नहीं है तो चलना हमारा चलना नहीं है, भगवान के धाम में चले वही पांव का उपयोग है। तो ये अम्बरीश महाराज अपना पांव भगवान के क्षेत्र में वृंदावन में उन्हें यज्ञ संपन्न किए, वृंदावन में उन्होंने एकादशी द्वादशी का व्रत संपन्न किया। और शिरो ऋषिकेश पदानुवंदने, और उनका सर ऋषिकेश श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करने में लगाया। कामम च दास्य नतु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। तो कथा में यहाँ विराम देते हैं।